सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आपको सुना रही हूं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग का लेख, जिसमें वो बता रहे हैं यूक्रेन युद्ध साबित कर रहा भावी लड़ाई एडवांस मिसाइलों से जीती जा सकेंगी, भारत उन्हें जल्द हासिल करे। सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आपको सुना रही हूं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग का लेख, जिसमें वो बता रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध साबित कर रहा भावी लड़ाई एडवांस मिसाइलों से जीती जा सकेंगी, भारत उन्हें जल्द हासिल करे। यूक्रेन ने अपने खार्कीव इलाके पर जो जवाबी कार्रवाई 5 सितंबर को शुरू की और उसके बूते उसने अपने 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जिस तरह वापस कब्जा कर लिया, उसके बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि अब रूस की हार होने ही वाली है। लेकिन रूस के पास जो विशाल रिजर्व फोर्स और अब तक इस्तेमाल न की गई युद्ध क्षमता है, उसे देखते हुए उसकी हार की संभावना कम ही है। लेकिन हाँ, उसे रोक तो दिया ही है। यह एक ताकतवर देश के लिए राजनीतिक हार से कम नहीं है। अगर यूक्रेन अपने खेरसन को वापस हासिल कर लेता है तो जान माल के बढ़ते नुकसान के कारण रूस शर्म से बचने के लिए डोनबास और क्रीमिया में सीमित जीत का सौदा कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बड़ी ताकतों को लंबी लड़ाइयों में थककर राजनीतिक हार कबूल करनी पड़ी है। वियतनाम और अफगानिस्तान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यूक्रेन सैन्य इतिहास में यह अनूठा उदाहरण पेश करेगा जब एक छोटे देश ने एक पारंपरिक युद्ध में बड़ी सैन्य ताकत को हराया। राष्ट्रीय संकल्प, रणनीति, नेतृत्व, प्रेरणा और बेहतर प्रशिक्षण जैसे तत्वों के अलावा अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का उपयोग निर्णायक सिद्ध हुआ। घरों, रिहायशी इलाकों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भीषण युद्ध नहीं हुआ है। लड़ाई जिताने वाले टैंकों, विमानों, हमलावर हेलीकॉप्टरों और तोपों को काफी हद तक नाकाम कर दिया गया है। लड़ाइयों के नतीजे प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन तय कर रहे हैं कि जिन्हें विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों, जमीन पर तैनात वेपन सिस्टम से दागा जाता है। इन वेपन सिस्टम को प्रभावी साइबर तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से अप्रभावित रहने वाले कमांड कंट्रोल संचार तंत्र, कंप्यूटर, खुफिया तथा टोही व्यवस्था, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकनांसा सिस्टम का सहारा हासिल होता है। सैन्य तकनीक पर अभी भी मनुष्य की मदद और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन के समर्थन से चलने वाली वेपन सिस्टम का वर्चस्व कायम है। पूर्णतः स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम को आने में अभी 2 दशक लग सकते हैं। यूक्रेन युद्ध में तीसरी से लेकर 5वीं पीढ़ी के टैंक, रोधी गाइडेड मिसाइलों, ड्रोनों, मनुष्य द्वारा ढोए जा रहे सकने वाले एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ मैं इस वेपन सिस्टम के संदर्भ में भारतीय सेना की मौजूदा क्षमताओं का विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। टैंक 100 साल से ज़्यादा समय से युद्ध क्षेत्रों पर राज करते रहे हैं। उनकी तकनीक दूसरी पीढ़ी के सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट गाइडेड टैंक रोधी वेपन्स के साथ आधुनिक होती गई है। कंपोजिट आर्मर, इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक जवाबी कार्रवाई और खुले ऑपरेटरों को निशाना बनाने में किया जाता है। यूक्रेन युद्ध में जेवलिन और न्यू जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन जैसी टैंक रोधी मिसाइलों के इस्तेमाल से काफ़ी फर्क पड़ा है। 1000 से ज़्यादा रूसी टैंक नष्ट किए जा चुके हैं। ये मिसाइलें इलेक्ट्रॉनिक और काइनेटिक जवाबी हमलों को नाकाम करती हैं, टैंक के कमज़ोर शिखर को निशाना बनाती हैं और किसी खुले ऑपरेटर को इन पर नजर रखकर इन्हें निर्देशित नहीं करना पड़ता। भारतीय सेना के पास दूसरी पीढ़ी के 6000 टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चरों का बड़ा भंडार है। थल सेना के पास मिलन T2, मिलन के लिए फैगोट लॉन्चर, कॉन्कॉर्ड्स और कॉर्नेट मिसाइलें मौजूद हैं। हर एक BMP के पास कॉन्कॉर्ड्स मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। T-90 टैंक, M 11-9 AM मिसाइलों से लैस हैं, जिन्हें मुख्य तोप से दागा जा सकता है। अपाशे को छोड़कर बाकी सारे हमलावर हेलीकॉप्टर मसलन MI-25/35 और रुद्र दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों से लैस हैं। ये सभी मिसाइलें स्थिर लक्ष्यों में से 90% को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इन सब की निरंतर निगरानी रखने के लिए ऑपरेटर को खुले में आना पड़ता है। ये मिसाइलें सीधे क्षैतिज दिशा में हमला करती हैं, जिन्हें टैंकों की सुरक्षा सिस्टम नाकाम कर देती है। इस कारण युद्ध में ये 25-30% तक ही प्रभावी हो पाती हैं, इसलिए टैंकों को ही तरजीह दी जाती है। इसराइल की तीसरी तथा पांचवी पीढ़ी के दागो या भूल जाओ टॉप अटैक करने वाले स्पाइक ATGM लॉन्चर कुछ सीमित संख्या में आयात किए गए हैं। नाग मिसाइल कैरियर या नामिका आधारित देसी नाग ATGM भी कुछ संख्या में ही टोही तथा सपोर्ट बटालियनों में शामिल किए गए हैं। इन अत्याधुनिक सिस्टम्स की संख्या इतनी कम है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय सेना अब आत्मनिर्भरता की नीति के आधार पर भविष्य के युद्ध देसी साधनों से लड़ने को प्रतिबद्ध है। DRDO तीसरी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक के कई ATGM नाग परियोजना के अंतर्गत विकसित करने में जुटा है। प्रोस्पिना जमीन पर मार करने वाली दागों और भूल जाओ वाली ATGM है, जो 4 किमी तक मार करने की टॉप अटैक क्षमता रखती है। इसे नामिका पर भी चढ़ाया जा सकता है। 12 नामिका सेना में शामिल किए जा चुके हैं। हेलिना ध्रुवस्त्र हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल है, जो 7-10 किलोमीटर तक मार कर सकती है। थल सेना और स्पेशल फोर्सेस के लिए मनुष्य द्वारा ढोई जाने वाली MPATGM मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। स्टैंड ऑफ ATGM हेलिना का संवर्धित संस्करण है और इसकी रेंज 20 किलोमीटर है, जिसे देशी ड्रोन की मदद से इस्तेमाल किया जाएगा। सेमी एक्टिव मिशन होमिंग ATGM को ट्यूब से दागा जाता है, लेकिन इसे टैंक की तोप से भी दागा जा सकता है। भारत की विशाल कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो ने मिसाइल बनाने वाली यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनी MBDA के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया है, जो पांचवी पीढ़ी के ATGM बनाएगा। मेरे ख्याल से देश में बनी तीसरी से पांचवी पीढ़ी की ATGM को कारगर नतीजे देने लायक संख्या में सेना में शामिल करने में अभी 3-5 साल तक समय लग सकता है। तब तक भारतीय सेना को दूसरी पीढ़ी की ATGM पर निर्भर रहना होगा, जो यूक्रेन में फर्क ला देने वाली तीसरी से पांचवी पीढ़ी के ATGM के मुकाबले 25-30% कम प्रभावी है। यूक्रेन ने टैंकों, युद्धक वाहनों, तोपों और दूसरे वेपन सिस्टम को नष्ट करने के लिए निगरानी और टोही ड्रोनों के अलावा कई तरह के हथियारबंद ड्रोनों और दूसरे गोला बारूद का इस्तेमाल किया। तुर्की के बेरक्तर TB2 ड्रोन काफी असरदार साबित हुए हैं, लेकिन ये ड्रोन उत्पादन और आयात के लिए बहुत खर्चीले हैं। दूसरे गोला बारूद सबसे सस्ते विकल्प हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 700 स्विच ब्लेड, 700 फिनिक्स घोस्ट और दूसरे ऐसे ड्रोन दिए हैं जो स्विच ब्लेड ड्रोन की कीमत $10,000 है, जबकि जेवलिन ATGM की कीमत इससे 8 गुना ज्यादा $78,000 है और अमेरिकी रिपर ड्रोन 3.2 करोड़ डॉलर का है। बेरक्तर TB2 ड्रोन $50,00,000 का है। यूक्रेन ने DJI Mavic 3 जैसे 6,000 सस्ते ड्रोन भी इस्तेमाल किए। भारत खुफियागिरी निगरानी टोही कामों के लिए 2000 से इजरायली सर्चर 1 और 2 ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। इनके बाद हेरोन ड्रोन आए, जो अत्याधुनिक लंबी दूरी तय करने वाले, देर तक ऊंची उड़ान भरने वाले निशस्त्र ड्रोन है। भारतीय सेना में फिलहाल 90 हेरोन सेवा दे रहे हैं। वायुसेना में मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई सुरक्षा सिस्टम को दबाने के लिए कुछ हरोप कॉमिकोज ड्रोन इसराइल से आयात किए हैं। भारत के पास अब तक उत्कृष्ट सामरिक सशस्त्र ड्रोन नहीं है, हालांकि हमने मौजूदा निशस्त्र ड्रोनों को सशस्त्र ड्रोनों के बदलने की परियोजना शुरू की है। अमेरिका से 30 MQ-9B प्रीडेटर स्काई सी गार्डियन सशस्त्र ड्रोनों की खरीद के $3 अरब के सौदे की प्रगति के बारे में परस्पर विरोधी खबरें मिल रही हैं। सामरिक लक्ष्यों के लिए प्रीडेटर जैसे लंबे समय तक टिकने वाले आधुनिक ड्रोन चाहिए, लेकिन भारतीय सेना के लिए टैंक आदि नष्ट करने, सैनिकों के मिशन के लिए सबसे अच्छे होंगे बड़ी संख्या में कामिकेज ड्रोन या लाइटर हथियार। भारत का निजी क्षेत्र सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करने की जरूरत को पूरा कर सकता है और उसे रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिले हैं। हालांकि इस बारे में काफी सनसनीखेज खबरें अटकलें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक सेना के काम में ड्रोन नहीं बनाए गए हैं। पिछले 2 दशकों में DRDO ने विभिन्न तरह के UAV विकसित किए हैं, लेकिन मैदान में परीक्षण के स्तर तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। मैनपैट मिसाइलों ने रूसी वायुसेना को आसमान से शब्दशः भगा दिया है। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइलें विमानों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ बहुत प्रभावी रही हैं। S-300/400 और Patriot-3 जैसी आधुनिक वायु सुरक्षा सिस्टम बेहद महंगी है और क्रूज मिसाइलों के मुख्य निशाने पर रहती हैं। कम महंगी मैपर्ड मिसाइलों को लॉन्च किए जाने से पहले पता लगाना मुश्किल होता है और वे युद्ध क्षेत्र की सभी कमजोर क्षेत्रों पर छा जाती हैं। अमेरिका द्वारा दी गई 1400 स्टिंगर मिसाइलें ही यूक्रेन की हवाई सुरक्षा का आधार थीं। भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक रूसी इगला मिसाइलें हैं और अपाशे हमलावर हेलीकॉप्टर के लिए स्टिंगर मिसाइलें सीमित संख्या में हैं, लेकिन मैनपैट मिसाइलों की संख्या इतनी कम है कि वे ज्यादा असरदार नहीं साबित होंगी, जैसे कि यूक्रेन में हुआ। जाहिर है भारतीय सेना के पास 3री से 5वीं पीढ़ी के ATGM सशस्त्र ड्रोन और मैनपैट मिसाइलों की कमी है। इन्हें अपने यहाँ विकसित करना या बाहर से हासिल करना बेहद जरूरी है। अगले दशक के लिए ये वेपन सिस्टम ही युद्ध में जीत दिलाने में मददगार होंगी, जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सुप्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ। नमस्कार।